एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, इस ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है।
हाँ, खासकर कामयाबी और हमारी अपनी क्षमताओं के बारे में।
नमस्ते, आज की हमारी चर्चा का विषय है एडम ग्रांट की किताब हिडन पोटेंशियल।
हिडन पोटेंशियल, हाँ। ये किताब उस आम धारणा को मतलब चैलेंज करती है कि कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ही ज्यादा काबिल या टैलेंटेड होते हैं। ग्रांट कहते हैं कि असली कहानी कुछ और ही है।
बिल्कुल, ये किताब यही पूछती है, क्या हम वाकई जानते हैं कि किसी इंसान में कितनी क्षमता छिपी है? क्या हम सही चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? ग्रांट का मानना है कि सफलता जन्मजात योग्यता से ज्यादा हमारे कैरेक्टर स्किल्स यानी कैरेक्टर स्किल्स,
हाँ, कैरेक्टर स्किल्स
और सीखने के सही तौर तरीकों मतलब विकास की प्रणालियों ग्रोथ सिस्टम्स।
और ये आज के दौर में बहुत जरूरी सवाल है ना, स्कूलों में, दफ्तरों में।
हाँ बिल्कुल,
यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को या खुद को कैसे देखते हैं, हर जगह ये सवाल उठता है। अगर ग्रांट सही है तो इसका मतलब है कि हम में से कई लोग अपनी या दूसरों की असली क्षमता को शायद पहचान ही नहीं पा रहे।
सही बात है।
तो ये किताब हमें सिखाती है कि उस छिपी हुई क्षमता को कैसे खोजें और निखारें।
तो चलिए इस दिलचस्प सोच के पीछे जो लेखक हैं एडम ग्रांट, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
हाँ, जरूर।
वे अमेरिका के वॉर्टन स्कूल में संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, और वहां सबसे कम उम्र में प्रोफेसर बने थे।
हाँ, ये बड़ी बात है।
उनकी पिछली किताबें भी काफी मशहूर हुई हैं, जैसे गिव एंड टेक, ओरिजिनल्स और थिंक अगेन।
हाँ, और उनकी खासियत यह है कि वो साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब संगठनों में इंसानी बर्ताव,
हाँ,
उसके जटिल शोध को आम लोगों के लिए समझने लायक और काम की बातों में बदल देते हैं, बड़े अच्छे से समझाते हैं।
और वो बनी बनाई सोच पर सवाल उठाते हैं।
बिल्कुल, और अपने तर्क हमेशा तथ्यों और रिसर्च पर आधारित रखते हैं।
डेटा ड्रिवन अप्रोच है उनकी,
इसीलिए वो छिपी क्षमता जैसे विषय पर बात करने के लिए एकदम सही व्यक्ति लगते हैं।
उनका काम ही है इंसानी बर्ताव की उन परतों को खोलना जो हमें अक्सर दिखती नहीं।
हाँ, वो उन गलत फहमियों को तोड़ने में माहिर है जो हम सबने प्रतिभा और क्षमता को लेकर पाल रखी हैं।
चलिए आप सीधे किताब पर आते हैं। हिडन पोटेंशियल का मूल विचार क्या है, अगर एक लाइन में कहें तो?
मेरे हिसाब से तो ये किताब कहती है कि सफलता की रेस में शुरुआती बढ़त उतनी मायने नहीं रखती।
अच्छा।
जितना कि आप कितनी दूरी तय करते हैं और सीखते कैसे हैं। मतलब ये पैदाइशी टैलेंट की जगह हमारे चरित्र पर, कैरेक्टर पर फोकस करती है।
बिल्कुल, ग्रांट का मुख्य तर्क यही है कि हम प्रतिभा यानी टैलेंट को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं।
हाँ, बहुत ज्यादा,
और उन गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में लंबे समय की सफलता दिलाते हैं,
जैसे कि अनुशासन, पहल करना जिसे प्रो एक्टिविटी कहते हैं, दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन,
और सीखने की ललक। हाँ,
सवाल ये नहीं कि किसमें टैलेंट है, बल्कि ये कि किसके पास वो चरित्र है जो क्षमता को हकीकत में बदल सके।
तो किताब हमें एक तरह की यात्रा पे ले जाती है। पहले वो दिखाती है कि हम प्रतिभा को कैसे गलत समझते हैं,
हाँ,
है ना?
फिर वो चरित्र कौशल की बात करते हैं, फिर वो बताते हैं कि सीखने और प्रेरित रहने मोटिवेशन के पीछे का विज्ञान क्या है,
और आखिर में इन सब बातों को अपनी शिक्षा, काम और निजी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
उनका मकसद है क्षमता के बारे में हमारी पूरी सोच को बदलना।
तो ये तो हुई मोटी मोटी बात कि ग्रांट कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वो इस नतीजे पे पहुंचते कैसे हैं? उन्होंने अपनी बात को कुछ हिस्सों में बांटा है।
हाँ, स्ट्रक्चर है किताब का।
पहला हिस्सा इस बात पर है कि हम अक्सर क्षमता को देखने में ही गलती कर देते हैं।
इसे वो कहते हैं क्षमता देखना, सीइंग पोटेंशियल। चरित्र आपका लॉन्च पैड है, कैरेक्टर इज योर लॉन्च पैड।
हाँ, और यहीं पे ग्रांट एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं कि विकास के लिए बेचैनी या डिस्कम्फर्ट जरूरी है।
अध्याय एक, क्रीचर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट।
डिस्कम्फर्ट, हमें तो लगता है आराम अच्छा है।
हाँ, वही तो। पर वो कहते हैं कि असली तरक्की तभी होती है जब हम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर मुश्किल चीजों से जूझते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में?
लगता तो है, लेकिन शायद इसीलिए वो आगे चलकर मानव स्पंज बनने की बात करते हैं।
अध्याय दो, ह्यूमन स्पंजेस।
हाँ, स्पंज की तरह सोखना।
जैसे स्पंज पानी सोखता है, वैसे ही हमें अपने आसपास के माहौल से ज्ञान और हुनर सोखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
इसका मतलब है ज्यादा सवाल पूछना, उत्सुक रहना, जिज्ञासु होना, और जो भी फीडबैक मिले चाहे अच्छा हो या बुरा,
हाँ, उसे खुले दिल से स्वीकार करना, सुनने की हिम्मत रखना।
और इसी से जुड़ा है उनका अपूर्णतावादी का आइडिया। इम्परफेक्शनिस्ट का अध्याय तीन, परफेक्शन। मतलब हर चीज बिल्कुल सही करने की चाह।
हाँ, वो परफेक्शनिज्म।
वो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। ग्रांट कहते हैं कि जो लोग गलतियां करने और उनसे सीखकर फटाफट सुधार करने से नहीं डरते,
इटरेट करना जिसे कहते हैं,
इटरेट करना, वो ज्यादा तेजी से सीखते हैं। यहाँ वो डेलिबरेट प्ले का जिक्र करते हैं।
डेलिबरेट प्ले, ये क्या है?
मतलब बिना फेल होने के डर के खेल खेल में नई चीजें आजमाना, प्रयोग करना।
अच्छा, एक्सपेरिमेंट करना।
हाँ, तो जरूरी नहीं कि पहली बार में सब सही हो, जरूरी है कि आप कोशिश करते रहें और सीखते रहें।
ठीक है, तो पहला हिस्सा हमें सिखाता है कि क्षमता को देखने का नजरिया बदलो, बेचैनी को अपनाओ, स्पंज की तरह सीखो और परफेक्शन के पीछे मत भागो।
सही।
इसके बाद किताब का दूसरा भाग आता है, क्षमता विकसित करना, डेवलपिंग पोटेंशियल, प्रेरणा के लिए संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स फॉर मोटिवेशन। यहाँ सवाल है कि ठीक है, हमने क्षमता देख ली, पर उसे निखारे कैसे?
अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ सीखना शुरू करते हैं और फिर एक जगह अटक जाते हैं, प्रोग्रेस रुक जाता है।
हाँ, वो प्लेटो आ जाता है।
ग्रांट बताते हैं कि ये सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है, लर्निंग वैली। लेकिन कई बार हम सच में फंस जाते हैं, वो इससे निकलने और विकास की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने के तरीके बताते हैं।
और यहीं पर उनका वो स्कैफोल्डिंग वाला आइडिया आता है ना?
हाँ, स्कैफोल्डिंग।
कि सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति के भरोसे मत रहो, जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए बाहर से ढांचा या मचान लगाते हैं।
हाँ, सपोर्ट के लिए।
वैसे ही अपनी आदतों या मुश्किल कामों के लिए बाहरी सहारे बनाओ। ये सहारे कुछ भी हो सकते हैं, एक तय रूटीन, किसी दोस्त की मदद या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल।
बिल्कुल, उनका तर्क है कि इच्छा शक्ति बढ़ाने से ज्यादा असरदार है ऐसे सिस्टम बनाना जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखें। अध्याय 5, डिफाइंग ग्रेविटी।
सिस्टम बनाना ज्यादा जरूरी
है। हमें ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जहां विकास करना मजबूरी बन जाए, न कि सिर्फ इच्छा पर निर्भर हो। एक कोट भी है उनका इस पर, आपने बताया था।
हाँ, कि हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के बजाय मचान या स्कैफोल्ड्स बनाने से बेहतर है।
सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में ये सिस्टम बनाना शायद मुश्किल हो।
हो सकता है, शुरुआत में मेहनत लगती है, और इसी से जुड़ा है गुणवत्ता को बेहतर बनाने क्रिस्टलाइजिंग क्वालिटी का विचार।
अच्छा,
मतलब ठीक है कि हम अपूर्णता को स्वीकार करें, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने काम के स्टैंडर्ड गिरा दें।
हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया।
नहीं, सवाल ये है कि गलतियों से सीखते हुए भी हम अपने काम की गुणवत्ता कैसे लगातार बेहतर कर सकते हैं, या फिर वही धैर्य, मतलब ग्रिट,
ग्रिट, हाँ,
और दूसरों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा, प्रो सोशल मोटिवेशन जैसी चीजें काम आती हैं।
तो ये दूसरा हिस्सा हमें क्षमता निखारने के लिए सिस्टम बनाने, मुश्किलों से पार पाने और गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात करता है।
बिल्कुल।
अब आता है तीसरा भाग, विकास की संस्कृतियां बनाना, सिस्टम्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ ग्रांट व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर स्कूलों और कंपनियों की बात करते हैं।
हाँ, वो पूछते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली को कैसे बदला जाए ताकि वो हर बच्चे की क्षमता को निखारे, न कि सिर्फ उन्हें जो शुरू से स्मार्ट लगते हैं।
अध्याय 7, एवरी चाइल्ड गेट्स अहेड।
ये तो बहुत बड़ा सवाल है।
हाँ,
वो ऐसे स्कूलों के उदाहरण देते हैं जो सिर्फ अकेडमिक नतीजों पर नहीं बल्कि चरित्र कौशल जैसे कि मेहनत, जिज्ञासा और टीम वर्क सिखाने पर जोर देते हैं।
और यही बात वो कंपनियों पे भी लागू करते हैं। कंपनियां कैसे अपने कर्मचारियों में छिपी क्षमता को पहचाने और विकसित करें।
अक्सर कंपनियां सिर्फ डिग्री या पिछले अनुभव के आधार पर लोगों को चुनती हैं।
हाँ, वही देखते सीवी में।
ग्रांट सुझाव देते हैं कि भर्ती और प्रमोशन में चरित्र कौशल को ज्यादा महत्व देना चाहिए।
लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है, पूर्वाग्रह, बायस।
सही कहा। ग्रैंड पोटेंशियल ब्लाइंडनेस की बात करते हैं।
ये क्या है?
पोटेंशियल ब्लाइंडनेस मतलब संस्थान अक्सर उन लोगों की क्षमता को देख ही नहीं पाते जो पारंपरिक खांचों में फिट नहीं बैठते।
अच्छा।
वो मौजूदा मूल्यांकन के तरीकों पर सवाल उठाते हैं और उन्हें सुधारने के सुझाव देते हैं।
और विकास के लिए जरूरी है एक सुरक्षित माहौल।
हाँ, साइकोलॉजिकल सेफ्टी,
जिसे ग्रांट गोल्डीलॉक्स जोन ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं।
अध्याय 8, मतलब एक ऐसा माहौल जहाँ लोग न तो बहुत ज्यादा आराम में हो न ही बहुत ज्यादा दबाव में।
बिल्कुल, जहाँ उन्हें सवाल पूछने, जोखिम उठाने और गलतियां करने की आजादी हो बिना किसी डर के।
तो ये तीसरा हिस्सा हमें बताता है कि क्षमता का विकास सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके आसपास के सिस्टम पर भी निर्भर करता है, स्कूल, कंपनी, समाज।
सही।
अब किताब का चौथा और अंतिम भाग है, सामूहिक क्षमता का एहसास, रियलाइजिंग कलेक्टिव पोटेंशियल। यहाँ बात और बड़े पैमाने पर होती है।
हाँ, यहाँ ग्रांट तर्क देते हैं कि जब कोई समुदाय या समाज सिर्फ प्रतिभा खोजने के बजाय क्षमता विकसित करने पर ध्यान देता है तो उसका कितना फायदा होता है।
अध्याय 9, डायमंड्स इन द रफ।
डायमंड्स इन द रफ, छुपे हुए हीरों को तराशना।
बिल्कुल।
और एक बहुत दिलचस्प बात वो ये कहते हैं कि जब हम दूसरों की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे किसी को मेंटर करना, सिखाना या उसका साथ देना,
हाँ, तो असल में हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10, स्ट्रेचिंग बियॉन्ड योरसेल्फ।
हाँ,
ये एक टू वे स्ट्रीट है।
ये तो बढ़िया बात है।
यहाँ वो अलग अलग तरह के मेंटर्स की जरूरत पर भी जोर देते हैं।
हाँ,
कोई कोच की तरह सिखाता है, कोई चीयरलीडर की तरह हौसला बढ़ाता है,
हाँ,
तो कोई स्पॉन्सर की तरह मौके दिलाता है।
हाँ,
अध्याय 9, द मेंटर्स हु मैटर। सबकी जरूरत होती है।
वाह, तो पूरी किताब हमें क्षमता को देखने, उसे विकसित करने, उसके लिए सही माहौल बनाने और फिर मिलकर आगे बढ़ने का एक पूरा खाका देती है।
हाँ, एक पूरा फ्रेमवर्क है।
इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या उभर कर आते हैं आपके हिसाब से?
मेरे लिए पहला और सबसे बड़ा संदेश है, चरित्र प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है।
हाँ,
हम अक्सर सोचते हैं कि कोई सफल है क्योंकि वो भाई पैदाइशी होशियार था।
हाँ, गिफ्टेड था।
ग्रांट कहते हैं नहीं, ज्यादातर सफलता मेहनत, लगन, सीखने की इच्छा जैसे चरित्र गुणों से आती है। और अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई भी विकसित कर सकता है।
ये उम्मीद जगाता है।
हाँ, भारत में सोचें तो हम कितनी बार बच्चों पर अच्छे नंबर लाने का दबाव डालते हैं, ये सोचे बिना कि क्या वो असल में मेहनत करना या मुश्किलों से लड़ना सीख रहे हैं।
सही बात है। दूसरी अहम बात, बेचैनी या मुश्किलों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ। विकास तभी होता है जब हम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं। चुनौती ही हमें मजबूत बनाती है।
क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर थोड़ी मुश्किल चीजें चुनते हैं या हमेशा आसान रास्ता खोजते हैं? ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। तीसरा संदेश, सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे मत रहो, सिस्टम बनाओ। आदतें डालना, एक रूटीन बनाना, अपने काम को आसान बनाने के लिए बाहरी मदद लेना,
वो स्कैफोल्डिंग।
हाँ, वो स्कैफोल्डिंग, ये सब इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद तरीके हैं। जैसे रोज सुबह दौड़ने जाना मुश्किल है, पर अगर जूते रात को ही निकाल कर रख लिए
या किसी दोस्त के साथ जाने का प्लान बना लिया,
हाँ,
तो जाना आसान हो जाता है। चौथा, गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। परफेक्ट होने की कोशिश में मत उलझो, इम्परफेक्शनिस्ट बनो।
इम्परफेक्शनिस्ट, अच्छा शब्द है।
हाँ, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हमारे समाज में फेल होने का डर बहुत ज्यादा है, जो हमें नई चीजें आजमाने से रोकता है। ग्रांट की ये बात काफी राहत देती है।
और पांचवा संदेश?
पांचवा संदेश जो मुझे बहुत पसंद आया, जब हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। ये प्रो सोशल मोटिवेशन वाली बात,
दूसरों की मदद करना।
हाँ, कामयाबी अकेले की दौड़ नहीं है। मिलकर काम करने और एक दूसरे का साथ देने से सबका फायदा होता है। सहयोग सिर्फ प्रतिस्पर्धा से बेहतर नतीजा दे सकता है कई बार।
ये सारे संदेश वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे एक जगह ग्रांट कहते हैं,
हाँ, कोट्स बहुत अच्छे हैं,
हम प्रतिभा से ग्रस्त दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम गलत चीज माप रहे हैं?
बिल्कुल।
ये सीधा सवाल पूछता है कि क्या हमारी सफलता की परिभाषा ही गलत है?
बिल्कुल। और एक और शक्तिशाली पंक्ति है, छिपी हुई क्षमता उन उपहारों के बारे में नहीं है जो आपके पास नहीं है, यह उन चरित्र कौशलों के बारे में है जिन्हें आपने अभी तक विकसित नहीं किया है।
वाह,
ये उम्मीद जगाती है। इसका मतलब है कि क्षमता कोई पत्थर की लकीर नहीं, इसे बढ़ाया जा सकता है।
एक और जो मुझे याद है, जो लोग सबसे तेजी से सुधार करते हैं वो होते हैं जो असहज होने में सबसे अधिक सहज होते हैं।
फिर वही कंफर्ट जोन वाली बात।
हाँ, उसी बात को मजबूत करता है
और वो स्कैफोल्डिंग वाली बात को पुख्ता करता कोट। हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के बजाय मचान यानी स्कैफोल्ड्स बनाने से बेहतर है।
ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है।
हाँ, अपनी सीमाओं को पहचानो और उनके आसपास सपोर्ट सिस्टम बनाओ।
और आखिर में ये नजरिया बदलने वाली बात, क्षमता आपकी चोटी की ऊंचाई नहीं है, यह वो दूरी है जो आप तय करते हैं।
मतलब ग्रोथ कितनी हुई।
हाँ, फोकस इस पर होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू करके कहाँ तक पहुँचे, न कि सिर्फ इस पर कि आप कितने ऊंचे पहुँचे। ये सफर को मंजिल से ज्यादा अहमियत देता है।
तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों को उतारें कैसे? क्या कुछ ठोस कदम हैं जो हम उठा सकते हैं?
बिल्कुल। व्यक्तिगत स्तर पर हम शुरुआत कर सकते हैं अपने उन चरित्र कौशलों को पहचानने से जिनमें हम शायद थोड़े कमजोर हैं।
सेल्फ असेसमेंट।
हाँ, फिर जानबूझकर ऐसी छोटी छोटी चुनौतियां चुनें जो हमें थोड़ा असहज करें, लोगों से ईमानदारी से फीडबैक मांगें कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं।
फीडबैक मांगना मुश्किल होता है वैसे।
हाँ, लेकिन जरूरी है, और सबसे जरूरी अपने लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे स्कैफोल्ड्स या सिस्टम बनाएं। जैसे अगर कोई नई भाषा सीखनी है तो रोज 15 मिनट का टाइम तय कर लें या कोई ऐप इस्तेमाल करें।
बच्चों की परवरिश या शिक्षा में हम उनकी कोशिशों की तारीफ करें, ना कि सिर्फ नतीजों की। वाह, तुमने कितनी मेहनत की, ये कहना ज्यादा जरूरी है बजाय तुम फर्स्ट आए।
सही, उन्हें मुश्किल काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, और जब वो गलती करें तो उसे डांटने के बजाय सीखने का मौका समझें।
वो गोल्डीलॉक्स जोन वाली बात, उनके लिए ऐसे काम चुने जो ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, जस्ट राइट।
दफ्तरों या टीमों में लीडर्स भर्ती करते समय सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि उम्मीदवार के सीखने की लगन, टीम में काम करने की क्षमता, इन गुणों पर भी ध्यान दे सकते हैं।
कैरेक्टर स्किल्स पर फोकस।
हाँ, कर्मचारियों को नई चीजें सीखने और अपने चरित्र कौशल को निखारने के लिए प्रोत्साहित करें, और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग खुलकर अपनी राय रख सकें, सवाल पूछ सकें और गलतियां करने से डरे नहीं।
वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत मददगार हो सकते हैं।
भारत के संदर्भ में कोई उदाहरण सोचें। मान लीजिए कोई छात्र है जो प्रेजेंटेशन देने से बहुत घबराता है।
हाँ, होता है अक्सर।
वो परफेक्ट होने की कोशिश छोड़कर छोटी ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करके, दोस्तों से फीडबैक लेकर धीरे धीरे अपनी घबराहट पर काबू पा सकता है।
ये इम्परफेक्शनिस्ट बनने और स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल करने का उदाहरण हुआ।
हाँ, या कोई मैनेजर अपनी टीम के किसी शर्मीले सदस्य को छोटे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देकर, उसका हौसला बढ़ाकर उसकी छिपी हुई लीडरशिप क्षमता को बाहर ला सकता है।
ये बहुत अच्छे उदाहरण है। तो इस किताब से वाकई काफी कुछ सीखने को मिला। आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि सफलता काफी हद तक हमारे हाथ में है, मतलब ये पहले से तय नहीं होती।
हाँ, प्री डिटर्मिन नहीं है।
जिसे हम टैलेंट मानकर हार मान लेते हैं, वो असल में विकसित किए जा सकने वाले कौशल और सही माहौल का नतीजा हो सकता है। ये सोच बहुत उम्मीद देती है।
और मुझे व्यक्तिगत रूप से वो स्कैफोल्डिंग और सिस्टम बनाने वाला विचार बहुत काम का लगा। ये हमें अपनी इच्छा शक्ति की सीमाओं को स्वीकार करना सिखाता है और
व्यावहारिक समाधान देता है।
हाँ, प्रैक्टिकल है।
साथ ही अपूर्णता को अपनाने की बात ये दबाव कम करती है और सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा मजेदार बनाती है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकें, ये जानने के बाद कि क्षमता तय नहीं है और उसे विकसित किया जा सकता है। आप आज अपने या अपने आसपास के किसी व्यक्ति में अनदेखी क्षमता को निखारने के लिए पहला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं? मिलेंगे अवे अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।